ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी में जलापूर्ति की समस्या और सीवेज लाइनों के रखरखाव से संबंधित मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मार्शलों की मदद से सभी विपक्षी भाजपा विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्रियों में गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 9 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे बुधवार से नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के अशोकनगर के बीच विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा और सोने और चांदी की कीमतें आज शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। दिल्ली विधानसभा में आज राजधानी में जलापूर्ति की समस्या और सीवेज लाइनों के रखरखाव से संबंधित मुद्दों पर एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा सदन की कार्यवाही शुरू करने के तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं ने कथित जल बोर्ड घोटाले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मार्शलों की मदद से सभी विपक्षी भाजपा विधायकों को सदन के बाहर करवा दिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने भाजपा विधायकों को सदन द्वारा दिल्ली जल बोर्ड पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 73,000 करोड़ रुपए के जल बोर्ड घोटाले पर चर्चा कराने की मांग की तो सभी भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा सदन में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाइयों की कमी और आपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के रवैये के कारण मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने की नौबत आ गई है। आप विधायक महेंद्र गोयल ने आरोप लगाया कि अधिकारी समय पर दवा नहीं भेजते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष राखी बिड़ला ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता की सेवा के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, लेकिन अधिकारियों के व्यवहार से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। सदन में केंद्र सरकार द्वारा कथित रूप से दिल्ली में असंवैधानिक राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश विषय पर भी चर्चा की गई। विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्रियों में गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता दिख रही है। गृह मंत्रालय को आज लिखे पत्र में श्री सक्सेना ने दावा किया कि मंत्रियों ने बहाने बनाकर उनके साथ बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परामर्श आवश्यक है ताकि शासन के नियमित कार्यों में बाधा न आए। राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के तहत केवल 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। बाकी अन्य 3 सीटों पर गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, जिनके नामों की घोषणा अभी तक पार्टी ने नहीं की है। दिल्ली में 6ठे चरण के तहत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम।
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 9 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट।
प्रवेश के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। निदेशालय ने बताया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों को स्कूल बदलने और दोबारा प्रवेश के संबंध में सहायता के लिए अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया 3 चक्र में आयोजित की जाएगी। पहले चक्र में पंजीकरण की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। इसमें विद्यार्थियों को आवंटित स्कूल की सूची 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। छात्र दाखिले से संबंधित दस्तावेज 30 अप्रैल से 10 मई तक जमा करा सकेंगे। दूसरे चक्र में पंजीकरण की प्रक्रिया 15 अप्रैल से तथा तीसरे चक्र में 10 मई से शुरू होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने चेतावनी में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। NCERT ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। यह भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो NCERT को ईमेल pd.ncert.nic.in के माध्यम से तुरंत सूचित करें। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में के कविता को गिरफ्तार किया था। विशेष CBI अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जमानत नामंजूर की। कविता ने अपने पुत्र की परीक्षा के लिए आवश्यक नैतिक और भावनात्मक सहयोग का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कविता ने इस मामले में सबूत नष्ट किए हैं और गवाहों को प्रभावित किया है। के कविता को 15 मार्च को उनके हैदराबाद आवास से गिरफ्तार किया गया था। इस समय वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी क्षेत्र से 2 ATM ठगों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ गुर इकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के 35 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक POS मनी ट्रांसफर मशीन और 4,500 रूपये नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी विशेषकर वृद्ध लोगों को अपना निशाना बनाते थे और ATM बूथ पर रूपये निकालने में उनकी मदद करने के बहाने उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत एक 3 वर्ष की बच्ची को उसके परिवार से मिलवाया है। राजधानी के नेपसराय क्षेत्र से लापता ये बच्ची पुलिस को लावारिस अवस्था में कल मिली थी। बच्ची को उसके परिवार से मिलवाने के लिए पुलिस विभाग ने पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार से नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के अशोकनगर के बीच विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। उत्तर रेलवे ने बताया है कि रेलगाड़ी संख्या 04004 नई दिल्ली अशोकनगर 10 और 18 अप्रैल को नई दिल्ली से पूर्वाह्न 12:10 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन तड़के 4 बजे अशोकनगर पहुंचेगी। वापसी दिशा में यह रेलगाड़ी 14 अप्रैल और 22 जुलाई को अशोकनगर से शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी, जो अगले दिन सुबह 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। सामान्य श्रेणी के डिब्बों वाली यह विशेष रेलगाड़ी मार्ग में फरीदाबाद, आगरा छावनी, ग्वालियर, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, झांसी और बीना स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की वरिष्ठ बाल चिकित्सक डॉक्टर शिल्पा शर्मा ने बताया है कि बच्चों में जन्मजात विकृतियों का इलाज संभव है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर शिल्पा शर्मा ने बताया कि जन्मजात शिशुओं में हार्निया, श्वास और खाद्य नली की समस्या, यकृत संबंधी विकृतियां और मल मूत्र मार्ग में रूकावट जैसी समस्याएं आम हैं। इन बीमारियों को सर्जरी से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और सर्जरी के बाद बच्चे पूरी तरह से सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने माता पिता को जागरूक करते हुए बताया कि बच्चों में इस तरह की समस्याएं दिखने पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उनको समय पर इलाज मिल सके।
कोविड के बाद बच्चों की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, खांसी जुकाम जल्दी पकड़ में आ रहा है और पकड़ में आ रहा है तो बहुत देर तक रह रहा है। मतलब जो नॉर्मल खांसी जुकाम 3-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए वो 7 से 10 दिन तक चल रहा है, इसलिए ये इम्यूनिटी बहुत डेफिनेटली डाउन हुई है बच्चों की। एज अ सर्जन हमने अपेंडिसाइटिस के केसेस ज्यादा देखे हैं, थ्रोम्बोसिस के केसेस ज्यादा देखे हैं और डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत कॉमन हो गए हैं पोस्ट कोविड, क्योंकि ब्लड हमारा थिक हो चुका है तो सबको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, खासकर जो बच्चे एक्सरसाइज करें, पानी की मात्रा जरूर ठीक से लें।
डॉक्टर शर्मा ने बताया कि महिलाओं को गर्भधारण से पहले अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि यदि महिलाएं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन करती हैं तो बच्चों में जन्मजात विकृतियों की रोकथाम हो सकती है।
फॉलिक एसिड लेना चाहिए बच्चे को मां के गर्भ में ठहरने से पहले, जब आप प्लानिंग करें कि हाँ प्रेगनेंसी करनी चाहिए तो 3 महीने मिनिमम फॉलिक एसिड लेना चाहिए, और ज्यादा अच्छा स्वस्थ बच्चा चाहिए तो कम से कम 2 साल एडवाइजेबल है कि फॉलिक एसिड पूरा रहे, क्योंकि हमारी डाइट में कम है, पहले ही मां डेफिशिएंट है तो पहले डेफिशिएंसी पूरी होगी फिर सफिशियंट फॉलिक एसिड होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा रहे, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी थ्रू आउट लेते रहना चाहिए।
सोने और चांदी की कीमतें आज शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। सोने का भाव 440 रुपये के उछाल के साथ 71,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1076 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 82,064 रुपये प्रति किलो हो गई। कीमतों में ये उछाल डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण आया। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से आज रात साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आम जनता के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प। वित्त और आर्थिक विशेषज्ञ बलवंत जैन और शरद कोहली श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पेंशन विकल्पों और उन्हें चुनने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नम्बर 01123421050 और 01123144 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सेना के लिए संयुक्त संस्कृति विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन में सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चैत्र शुक्ल उगादी गुड़ी पड़वा चेटी चंद नवरे और सजीबू चेई राउबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम। राजधानी दिल्ली में आज का मौसम सामान्य रहा और दिनभर तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में जलापूर्ति की समस्या और सीवेज लाइनों के रखरखाव से संबंधित मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा में आज एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मार्शलों की मदद से सभी विपक्षी भाजपा विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्रियों में गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।